ఓం శాంతి. హమ్ సభీ భాయి బహనోనే కల్ ప్యారే బాప్ దాదాజీ కి మురళీ వీడియో కే ద్వారా దేఖీ ఔర్ సునీ. ఒరిజినలీ యే మురళీ 18 మార్చ్ 2008 కి హై, యానీ లగ్భగ్ 10 వర్ష కే బాద్ హమ్ ఇస్కో సున్ రహే హై. 10 వర్ష పహలే సునీ హుయీ మురళీ జబ్ ఆప్నే కల్ సునీ తో ఆప్కో లగా కి జో కుచ్ ఇస్మే బాబా నే కహా హై వో హమ్నే పూరా కర్ లియా థా యా కర్నా హై. ఇస్లియ బాబా కహతే హై కి శాస్త్ర తో హమ్ ఏక్ జన్మ మే భీ కై బార్ పఢ్తే ఆయ ఔర్ అనేక జన్మో మే తో హమ్నే అనేక బార్ పఢే, లేకిన్ హమారే శాస్త్ర బదలే నహీ, వహీ కే వహీ రహే. అర్థాత్ అగర్ స్కూల్ కే బచ్చే కి కితాబ్ నా బదలే తో క్యా గినా జాతా హై కే వో పాస్ నీ హువా హై, అగలీ కితాబ్ కే లాయక్ నీ బనా హై. పరంతు హమే తో బాబా నిత్య నయీ పఢాయీ పఢాతే హై, క్యోంకి హమారే ఫేల్ ఔర్ పాస్ హోనా రోజ్ చల్తా రహతా హై, రోజ్ హీ చల్తా రహతా హై, రోజ్ హీ యా తో హమ్ విజయీ బన్తే హై యా హార్ ఖాతే హై. విజయీ బన్తే 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 జబ్ పూరా విజయీ బన్ జాయేంగే తో విజయ మాలా కే అందర్ ఆ జాయేంగే, ఔర్ అగర్ హార్ నహీ ఖాయేంగే ఫైనలీ तो बाबा के गले का हार बन जाएगा. लेकिन वो अंतिम विजय जो है उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि बहुत काल से हम हर बात में विजयी बनते जाए बनते जाए बनते जाए. अंत में जब बाबा हिसाब लेते हैं तो ये देखते हैं कि इस बच्चे ने కితనీ బార్ కితనీ బాతో మే విజయ ప్రాప్త కీ ఔర్ కితనీ బార్ కితనీ బాతో మే హార్ ఖాయి, టోటల్ గినతే హై. ఫిర్ యే భీ హై జబ్ హార్ ఖాయి తో ఉస్ హార్ కే హల్చల్ మే కితనా టైమ్ రహే, హార్ ఖా కే ఫుల్ స్టాప్ లగా కే ఉస్సే సీఖ్ కర్ ఆగే బడే या उसमें भी टाइम गवाते रहे, तो बहुत सारी चीजों का बाबा हिसाब रखते हैं, तब जाके हमारा फाइनल नंबर बनता है. सार यही निकलता है कि बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ आगे बढ़ो, फुल स्टॉप लगाओ आगे बढ़ो, पिछली बात में टाइम वेस्ट नहीं करो, सिर्फ उससे लेसन लो. तो कल की मुरली जो थी బాప్ దాదాకి, సబ్సే పహలే తో బాబా నే హమారా ధ్యాన్ హమారీ ప్రాప్తి యా ప్రాపర్టీ కి తరఫ దిల్వాయా కి దేఖో తుమ్ బచ్చోం కి కితనీ ప్రాపర్టీ హై, తుమ్హారే కో ఖజానే దేనే వాలా కౌన్ హై ఔర్ కితనే ప్రకార్ కే ఖజానే హమకో మిల్తే హై. ఔర్ బాబా కహతా హై కి సభీ కో ఏక్ హీ సమయ एक समान खजाने मिल जाते हैं, फिर उस खजानों को जो जमा करते हैं वो अलग अलग करते हैं, कोई कितना करते हैं कोई कितना करते हैं कोई कितना करते हैं, तो खजानों को कितने प्रकार से हम देखें और किस किस खजाने को किस तरीके से जमा करें, तो बाबा ने दोबारा याद कराया. ये भी कहा है कि अविनाशी खजाने हैं, आपको इन खजानों के लिए कोई चिंता नहीं है, जब आपके खजाने हो गए तो हो गए। दुनिया के अंदर किसी को धन मिलता है आजकल तो जितना मिलता उतनी चिंता भी बढ़ जाती, पर इन खजानों की बच्चों को होने की कोई चिंता नहीं। फिर बाबा ने और आसान किया कि खजानों को बढ़ाने की चाबी आपके पास है, उसको खोना नहीं। माताओं के पास बाबा ने कहा ज्यादा संभाल सकती हैं, माताएं को बाबा ने कहा क्या कि घर की चाबियां संभालती हैं तो बाबा के खजानों की चाबियां भी अच्छी तरह संभाल सकती हैं। माताजी ताली तो बजाओ, आपकी कितनी बाबा ने महिमा की है। हाँ देखो भाई भी आपके लिए ताली बजा रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि देखो सिर्फ एक शब्द है जिसके कारण हमारा तीव्र प्रसारक जो है वो ढीला हो जाता है, रुक जाता है, और वो शब्द बाबा कहते हैं जरा सा बदल दो तो क्या हो जाएगा, उड़ती कला का प्रसारक हो जाएगा। और वो शब्द जो बदला हुआ है वो क्या है, निवारण। कारण नहीं निवारण, कारण तो बताते रहोगे तो कारण तो कई तरीके से बाबा कहता है कि कारण बताने में तो बच्चे को कोई जीत ही नहीं सकता, जो भी बात होगी उसका कारण बता देंगे। कारण बताने में वो हर एक को जीते हुए हैं, कोई ना कोई तरीका बताएंगे ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो बाबा कहता है लेकिन कारण चलता रहेगा तो काम नहीं चलेगा, हमको निवारण करने की शक्ति धारण करनी है। कारण नहीं सोचो उसका निवारण सोचो, तो कारण बहुत सारे दब जाएंगे और निवारण आप अपना भी कर सकोगे और दूसरों का भी कर सकोगे। इसलिए निवारण स्वरूप बनना है। फिर बाबा कहता अपने लिए नहीं बनना है, आपकी आज के दुख की परिस्थिति में देखो कि दुख शांति की परिस्थिति में कितने लोग कितने भगत पुकार कर रहे हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति दो, ए मुक्ति दाता तुम आओ। तो बाबा कहता वो मुक्ति दाता कौन है, वो तो बच्चे ही हैं। इसलिए बच्चों को अपने को भी मुक्त करना है सबसे पहले, फिर दूसरी आत्माओं को, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है दूसरी आत्माओं को भी मुक्त करवाना है। इसलिए अपने को सबसे पहले मुक्त करना है, वो भी बाबा ने इस मुरली में बताया है उसकी विधि क्या है। और क्योंकि ये मुरली जब चली थी उस समय भी दिल्ली का ही ग्रुप था, तो फिर बाबा ने दिल्ली वालों को उनकी जिम्मेवारी बताई है और उस जिम्मेवारी में सबका सहयोग मिलेगा लेकिन दिल्ली वालों को तैयार करना, तो वो भी बाबा ने बताया है। अब हम बाबा की मुरली को बाप दादा की वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो ये पहले मुरली चली थी 18 मार्च 2008 को और कल फिर चली है 5 अप्रैल 2018 को। अब ये तो नहीं आप चाहते कि 10 साल बाद बाबा फिर ये मुरली चलाए, या इसको इसका स्वरूप बनना है, तो सुनिए। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने हम सबको क्या बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर, آپ سب کیا ہیں؟ بابا کے ساری دنیا کے لیے فائنینس منسٹر ہیں، یا یوں کہیں کہ شری لکشمی جی ہیں، کیونکہ لکشمی جی کے پاس ہی خزانے دکھائے جاتے ہیں، اور وہ خزانے تو باہر کے ہیں، لیکن بابا کہتے ہیں کہ یہ ایسے خزانے ہیں ان کو جتنا بانٹو بڑھیں گے. تو اس روپ میں بابا دیکھ رہے ہیں ہر ایک بچے نے خزانے کو کتنے خزانے میں، اپنے خزانے میں کتنے خزانے جمع کیے ہیں، اور یہ دیکھ کر ہرشت ہو رہے ہیں. آپ کا خزانے سے کوئی لینا چاہے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ بینک میں جا کر چیک دے کر کھڑے ہو کر تب پیسہ ملے گا، یا آپ کے خزانے اے ٹی ایم ہیں کیا ہیں؟ کوئی آپ کے سامنے آئے تو آپ کا جب چاہے لے سکتا ہے، جو جتنا چاہے لے سکتا ہے، یا اس کا کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ ٹھہرو ہم سو لیں پھر آنا خزانہ لینے؟ تو بابا کہتے ہیں خزانے تو سبھی کو ایک ہی سمے پر اور ایک ہی جیسے ملے ہیں، کسی کو کم زیادہ تو نہیں ملا. جو کہتے ہیں کہ ہم سب کو بابا نے، جیسے ٹیچر سب کو ایک ہی پڑھائی پڑھاتا ہے، ایک جیسے خزانے دیے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ آپ سن رہے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھانا، سن تو رہے ہیں؟ ٹھیک. اچھا، لیکن بابا کہتے ہیں پھر بھی جمع کا کھاتا سبھی بچوں کا الگ الگ ہے، کیونکہ سمے پروان ابھی باپ دادا خزانہ دیکھ کر کم زیادہ ہے، تو سمے پرمان ابھی باپ دادا سبھی بچوں کو سرو خزانوں سے سمپن دیکھنا چاہتے ہیں. ریزرو بینک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا خزانہ کچھ کم ہے تو جتنا چاہیے ہم بھر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خزانے صرف ابھی ایک جنم کے لیے نہیں ہیں، یہ اوناشی خزانے انیک جنموں کے لیے آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں. کتنے جنم چلنے والے؟ کتنے جنم؟ کوئی کہہ رہا ہے 84. کتنے؟ 21. پکا ہے؟ اگر کم خزانے جمع کیا اور تریتا میں آ گیا تو کتنے جنم چلیں گے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. اس لیے بابا کہتے ہیں اچھی طرح بھر لو تاکہ آپ کو 21 جنم تو چلیں. اس سمے کے خزانوں کو تو سبھی بچے جانتے ہی ہیں کہ باپ دادا نے کیا کیا خزانے دیے ہیں، اور وہ کہنے سے ہی سب کے سامنے آ جاتے ہیں. بابا کہتا ہے جیسے زیوروں کے سیٹ ہوتے ہیں نا، جویلری کے، تو اس سیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سب بچوں کو پتا ہے. اور بابا کہتا ہے ایک سیٹ نہیں، آپ کو تو میں نے انیکا انیک سیٹ 21 جنموں کے لیے دیے ہوئے ہیں. سب کے سامنے خزانوں کی لسٹ ایمرج ہو گئی نا. جیسے ماتا پتا کنیا کی شادی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کو جیوروں کے سیٹ دینے ہیں، تو لسٹ بناتے ہیں نا، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سر سے پاؤں تک. تو بابا بھی کہتا ہے کہ آپ آتماؤں کو سسرال بھیجنے سے پہلے میں اچھی طرح سے انیکا انیک سیٹ سے بھرتو کرنا چاہتا ہوں. سب کے ماتائیں زیادہ خوش ہو رہی ہیں. اچھا، تو بابا کہتا ہے یہ آپ کو کیا پتا ہے کہ ستیوگ میں کیا ہم لوگ نہیں ماتا بنیں گے؟ آدھے جنم تو ماتا کے ہی ہوتے نا، یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے. तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने पहले भी बताया था कि खजाने तो मिले लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना विधि सुन लीजिए, लौकिक में तो माता पिता खजाने दे देंगे उतने ही रहेंगे, लेकिन बाबा ने हमको ये भी बताया है कि मैं तो आपको विधि बताता हूं कि आप खजानों को बढ़ा सकते हैं, कितनी प्रकार के खजाने हैं उसको किस विधि से बढ़ाया जाए ये गुर अपने पास रखना है। तो बाबा ने मुख्य विधि क्या बताई है, तो बाबा क्या ये नोट करना, मुख्य विधि क्या बताई है, पहली विधि जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। निमित्त मैंने क्या कि कोई भी बाबा जिम्मेवारी देता है, कोई भी सेवा निकलती है, उसके निमित्त बनना, अर्जुन बनना, मैं बनता हूं निमित्त। कई सोचते हैं निमित्त का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं नहीं कहना बाबा कहना है, नहीं, निमित्त मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बिजनेस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तभी तो कमाई होती है ना। एक तो निमित्त बनना है और दूसरा निर्माण। तो जो निमित्त का पहला अर्थ लेते हैं, निमित्त मैंने, मैं निमित्त हूं, वो वास्तव में दूसरे शब्द का अर्थ है निर्माण, कि निमित्त बनते हुए निर्माण रहना है तब ये खजाने जमा होंगे। तो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते कितने में जमा होते हैं ये चेक करो। और बाबा क्या कहते हैं, एक होता खाली, एक होता भरपूर, फुल। तो बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया हुआ, फुल या आधा फुल या कम खाली। तो बाबा कहते हैं जितने खजाने जमा होंगे उतना ही भरपूर होंगे, फुल भी नहीं भरपूर। आपसे जितना मर्जी ले जाओ फिर भी फुल है, जैसे सागर होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर चीज के साथ लगा हुआ फुल, नॉलेज फुल, आधी नॉलेज नहीं, नीम हकीम खतरा जान नहीं, ब्लिस फुल, स्पीस फुल। तो बाबा कहते हैं जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा, और जो भरपूर होता है उसमें हलचल नहीं होती। आपका सूटकेस फुल हो तो हलचल नहीं होगी, चाहे आप उसमें शीशे की चीजें डाल दो, लेकिन अगर फुल नहीं है तो फिर उथल पुथल का खतरा है। तब बाबा कहते हैं ये क्वेश्चन भी, प्रश्न आदि, संशय ये क्यों उठता है कि फुल नहीं है, इसलिए खजानों से फुल कर लो, फिर तो आपको जगह ही नहीं रहेगी और खजाने लेने की। इसलिए सतयुग में किसी को कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती। तो जो भरपूर होगा उसके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देगा। जो व्यक्ति किसी चीज का भरपूर होता है वो कहां से दिखता है, उसके चेहरे में नेचुरली उसकी खुशी रहती है कि मेरे पास इतना है। किसी का पद ऊंचा हो, किसी का धन ज्यादा हो, किसी में कोई विशेषता हो, उसका नशा होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फखुर चमकता रहता है, और जितना ही रूहानी फखर होगा उतना ही वो बेफिक्र बादशाह होगा। अर्थात आपने देखना है अब रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो आपको कोई फिक्र हो, कोई नशा कम हो, तो देखना है फिर कि रूहानी खजानों की कमी तो नहीं है, तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। आप बताइए, आप सबको जो बाबा पूछ रहा है बेफिक्र बादशाह का रूहानी नशा है, कभी तो कल ही मुरली सुनी है, जिनको है जरा हाथ उठाइए। ढीला ढीला नहीं, आधा नहीं, फुल आधा हाथ मैंने, आधा नशा। बाबा कहते हैं दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। दर्पण तो सबको मिला हुआ है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, आपका दिल क्या कहता है। अगर नकली खुशी होगी, किसी उल्टे नशे की खुशी होगी, ऊपर से हंसते रहेंगे लेकिन दिल क्या कहेगा, अंदर खाली है, तो अंदर बाहर एक नहीं होगा। और जिसका अंदर बाहर एक नहीं होता उसको बाबा कहता है खौफनाक, खौफनाक, क्योंकि सब उसके पास जाने से डरते हैं, खौफ खाते हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चेहरा चेक करो, क्या चेक करो कि किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है या है। हो सकता है आपका वापस जाने का टिकट गुम हो गया हो, तो फिक्र है या नहीं है, है? अब हंस रहे हैं, हुआ नहीं है, लेकिन मान लो हो जाए तो फिक्र में आएंगे या फख्र में रहेंगे। अरे टिकट गुम हो गया तो बाबा के घर बैठे हैं ना, कहीं प्रदेश में तो नहीं बैठे, फुटपाथ पे तो नहीं बैठे। अच्छा है टिकट गुम होगा, दो दिन और बाबा के घर रहेंगे, इसलिए आगे आया हुआ मुरली में, आगे मुरली में आया हुआ आप सुनना कि जिसको फिक्र नहीं होता उसको क्या होता है, कि जो हुआ वो क्या, बहुत अच्छा, और जो होगा। अगर ये याद रखोगे टिकट के, आपका सारा पर्स भी गुम हो जाए आपको परवाह नहीं, ठीक है ना। इसलिए किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। फिक्र क्या होता है, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। तो बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा जो आपने पहले सुना, क्या जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा से अच्छा होगा, अच्छे से भी अच्छा। क्यों, ये बाबा इतने कॉन्फिडेंस से हमको सिखाता है क्यों। अब किसी की टांग टूट गई है तो आप उसको जाके कहो कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, उसकी समझ में तो नहीं आएगा ना। अच्छा मैं ये नहीं कहता मान लो आपकी ही टूट गई, वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा अगर टांग टूट जाए तो क्या सोचना चाहिए, हैं? कि शुक्र करो एक ही टांग टूटी है, शुक्र करो कि अगले जन्म में तो नहीं चले गए। इसलिए बाबा कहता है एक बात तो ये, दूसरे ये है चढ़ती कला का युग, तो ये पक्का हमको है कि सारे युग गिरती कला के हैं और संगम युग क्या है? चढ़ती कला का। तो चढ़ती कला की निशानी क्या होती है कि आगे ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो इसलिए वैसे ही चढ़ती कला पर है तो जो हुआ अच्छा, आप बाबा के बच्चे बन गए, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। कई ये भी कहते हैं कभी कभी, आप बाबा के बच्चे बन गए, फंस गए। आप बताओ, उनको ये ज्ञान है कि ये चढ़ती कला, ये बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम बॉम्बे में गए, एक युगल बहुत अच्छा रोज क्लास में आता था, उनका यंग बेटा भी आता था। एक दिन बेटा सुबह यंग क्लास में आते आते बस के नीचे आ गया और अगले जन्म में चला गया। हमारे लिए तो साधारण खबर है, दुनिया वाले तो पता नहीं क्या सोच। अब वो बेचारे उदास। पहली बात तो ये कि यंग बच्चा चला गया, और दूसरी ये खास, बाबा के सेंटर में जाता हुआ बस के नीचे चला गया। ये तो नहीं होना चाहिए। अब सोचो, तो दुख तो होता, लेकिन अब दुख ना हो ये ज्ञान है। घटनाएं हो, घटनाएं तो होंगी, पर घटना ना हो, दुख ना हो। अब आप जानकी दादी जी से पूछिए जाके, वो कहती हैं कि मेरे दर्द तो हो रहा है पर मुझे दर्द का दुख नहीं है। फर्क पड़ गया? दर्द तो हो रहा है पर दर्द का दुख नहीं है। अब उनको दूसरे अपने किसी संबंधी ने ही शरीर छोड़ दिया, दुख हो रहा है। अब मान लो मेरे पास आए, मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया कि देखो, मृत्यु तो हर एक की निश्चित है। अब मृत्यु सेंटर में जाते ही हो जाए या पोस्ट ऑफिस जाते ही हो जाए, कोई फर्क तो नहीं है, उसकी मृत्यु होनी है। दूसरी बात, अगर वो जख्मी हो जाता, बस के नीचे आके मृत्यु नहीं होती, और 15-16 दिन हॉस्पिटल में रहता, आपको भी नचाता, आओ जाओ, कितना उसको भी कष्ट होता, फिर उसकी मृत्यु होती, वो अच्छा था या ये अच्छा है भाई? सोचो तो कल्याण है कि नहीं है। तो बाबा कहता है कि एक खत्म हुआ तो खत्म हुआ, एक चींटी को भी आप आधी मार दो तो कितना कष्ट होता है उसको। इसलिए ये देखना चाहिए कि कर्मों की गति तो है ही, कर्मों की गति में भी बाबा अपने बच्चों का कर्म भोग कम से कम कष्ट से छुड़वाता। इसलिए जो हुआ सो अच्छा, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फकुर, रूहानी फकुर अर्थात सोमान धारी आत्मा। आज कोई बड़े से बड़ा है वो बेफिक्र बादशाह हो सकता है, हो सकता है प्रधानमंत्री भारत के बेफिक्र बादशाह हो सकते हैं, उनको कितनी पावर है देखो। लेकिन अगले इलेक्शन में क्या होगा, फिक्र तो है। इसलिए बाबा कहता है धनवान है, बहुत धन है, मेरा धन को इनकम टैक्स वाले ना पकड़ लें, फिक्र तो है ना। इसलिए बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह, बादशाह को भी अगर फिक्र है तो बादशाह कहेगा। एक बादशाह थे, वो रात को थके हुए आए, सारा दिन शिकार खेलते रहे जो उनका काम होता, और आके एक महल में दरबान को बोले, देखो मुझे बहुत नींद आ रही, मैं बहुत थका हुआ, भोजन भोजन भी नहीं करूंगा, सीधा सोना है। तो दरबान ने कहा, हजूर आपका सोने का महल सही है, स्लीपिंग पैलेस तैयार है, जाके सोइए। उनको ले गया और गेट खोला और फिर कान में बोला कि महाराज, शाम के 4 बजे काला सांप आया था, वो आपके इसमें घुस गया था, और हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की, मिला नहीं, पर आप तो बादशाह हैं, सारी आपकी प्रजा है, सांप भी आपकी प्रजा है, आपको क्या कहेगा, आप आराम से सो जाइए। अब वो थके हुए खूब सोएंगे क्या, वो हर वक्त उनको सांप ही दिखेगा। तो बादशाह काहे कह रहा, इसलिए बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह मीन्स के ऐसा सम्मान हो जो हुआ अच्छा, आपको सांप का डर तो नहीं लग रहा कि डायमंड हाउस में कोई सांप आ गया है, पता नहीं आपकी सीट के नीचे ही ना हो। तो बाबा कहते हैं डर का मूल कारण क्या है, डर देह अभिमान से लगता है, क्योंकि देह छूटने वाली है और इसके साथ अन्य चीजें छूटने वाली है। अगर आप देह अभिमान से अलग हो जाओगे, मान लो आप अव्यक्त हो जाओ, आपको सांप का डर लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहता है विनाशी चीज का पता होते हुए भी कि ये विनाशी है, उसको अज्ञान वश पकड़े रखना वो भय का मूल कारण है। जिस दिन हम शरीर छोड़ेंगे, क्या हमारे फ्रिज में एक संतरा भी नहीं रहेगा, सारे खा के छोड़ेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। इसलिए बाबा कहता है कि ये तो एक साधन है, इसलिए बाबा ने हमको कहा है इसको साधन मान के चलो, अटेंशन रखो और प्रैक्टिस करो कि ये देह मेरा माध्यम है, तब धीरे धीरे वो स्टेज आएगी। अच्छा, विनाशी धन वाले जितना कमाते हैं उतना समय परमान फिक्र में भी रहते हैं। आपको एक नंबर दो नंबर का तो पता ही होगा, तो इसलिए दो नंबर ज्यादा होता है पर उसी की चिंता रहती है। इसलिए बाबा कहता है विनाशी धन का ये हाल है। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए कोई फिक्र है? कहा जाता है विद्या वो धन है जिसको चोर लूट नहीं सकता, वो लौकिक विद्या की बात नहीं है, अविनाशी ज्ञान की बात है। लौकिक विद्या में तो आप एमए पढ़ लोगे, अगले जन्म में वो ये नहीं कहेंगे एमए पढ़ा वो आगे पढ़, कहेंगे फिर पहली में जा, केजी से शुरू कर, वो भी विनाशी है। इसलिए बाबा कहते हैं आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए कोई फिक्र है? बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं वह सदा ही, आगे सुनना, सदा ही सपन में भी बेफिक्र बादशाह, उनके ख्वाबों ख्याल में भी, सपन और संकल्प में भी फिक्र नहीं आ सकता, क्योंकि उनको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे, इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो निश्चिंत रहने के लिए, निश्चित रहने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, हम कितने निश्चय बुद्धि हैं। अच्छा, तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष तीन प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। आपके तीन अकाउंट हैं, एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, जितना प्रसारत उतना जमा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना ही पाएगा, और जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। ये तो सिंपल है, लेकिन दूसरा खाता है दुआओं का खाता, इसका बड़ा ध्यान देना है। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है, सदा सदा संबंध संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हों, और संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। अब आप देख लेना कि आप हर परिस्थिति में संतुष्ट हैं और दूसरे भी हर परिस्थिति में आपसे संतुष्ट हैं। अगर आप जरा भी असंतुष्ट हो गए तो फिर दुआओं का खाता नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके मन में आपके बोल में असंतुष्ट करने वाले के लिए शुभ भावना शुभ कामना नहीं निकलेगी। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सब सेवा करते हैं, संतुष्ट रखने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी पुण्य का खाता नहीं जमा होता। पुण्य के खाते का साधन है, अब ये सुन लीजिए, दिल पे लिख लीजिए, पुण्य सबसे बड़ी चीज है। पुण्य के खाते का जमा करने का साधन है, जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध से संपर्क में आते हैं, तो सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव भाव और भावना से सेवा करना। आप सेवा तो करते हैं, लेकिन एक तो निस्वार्थ, निस्वार्थ मैंने मेरा सेंटर नहीं, मेरा मान नहीं, मैं नहीं आए। फिर दूसरे बेहद की भावना, उससे भावना बनी, बेहद की कितनी चीजें हैं, बेहद की वृत्ति स्वभाव भाव और भावना, इससे सेवा करेंगे तो पुण्य बने। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा होता जाता है। तो चेक करो, चेक करना तो आता है ना, जिसको नहीं आता है वो हाथ उठाओ। लो जी, बाबा आपसे हाथ उठवा रहे हैं, जिसको चेक करना नहीं आता हाथ उठाओ। एक ही हाथ उठाया, दो तीन चार पांच, अच्छा चेक करना नहीं आता तो बाबा ने बताया फार्मूला, वो लिख लो ना कि निस्वार्थ, आपने जो भी सेवा करनी है उसमें अपना कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बेहद की वृत्ति, क्योंकि आपको बेहद की बादशाही लेनी है या हद की लेनी है, बेहद का स्वभाव भाव और भावना, लिमिट में नहीं आना, ये मेरा है ये दूसरा है। मान लो आपने किसी को ज्ञान सुनाया, उसने नहीं सुना, आप उसके लिए क्या भावना रखते हो, उसके लिए भी वही भावना रखनी है कि ये भी ब्रह्मा बाबा की संतान है, लेकिन पिछली बिरादरी का है, और अब भी है तो बाबा का ही बच्चा ना, उसका पार्ट नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा, पर मैं क्यों उसके लिए कुछ सोचूं कि देखो जी इतना ज्ञान सुना है, इसके पल्ले ही नहीं पड़ता, ये तो ब्रह्मा भी आ जाए इसको ज्ञान नहीं सुना सकता, तो ये ठीक तो नहीं है ना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है। तो बाबा कहते हैं सो पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, तीनों ही कितनी परसेंटेज में जमा हुआ है, हर एक अपना अपना देखो। जो चेक करता है, जो चेक करता रहता है वो हाथ उठाओ। बाबा कहते चेक करते हो ये बीच बीच में, फिर कईयों ने हाथ उठाया, पहली लाइन वालों ने नहीं उठाया। तो बाबा कह रहे हैं पहली लाइन नहीं करती है क्या चेक, क्या कहते हैं, करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है, क्या अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, समाप्ति नजदीक आ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्म बाप को रूहानी नशा है, बाप को भी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है जो स्वराज्य अधिकारी बनके विश्व राज्य अधिकारी बनने वाला परमात्मा का बच्चा है। कितना नशा है भगवान को, नशा है कि हम उसके होवनहार राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, स्वराज्य अधिकारी बन के। अच्छा, अब बाबा आगे कह रहे हैं, जो तो खजाने तो बाप द्वारा, बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं, इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। वो तो विधि आपको याद है ना, जो बाबा ने बताई है, क्या गीत भी बजा था यहाँ, क्या विधि थी जी, भूल गए हैं? हाँ, तीन बिंदु, ये तीन बिंदु मत विसरो। तो बाबा कहते हैं जमा करने की चाबी है तीन बिंदियां, है ना सभी के पास चाबी, तीन बिंदियां लगाओ तो खजाना जमा होता जाएगा। माताओं को चाबी लगानी आती है ना, माताएं चाबी संभालने में होशियार होती हैं। माता को देखना तो यहां उसके बहुत सारा चाबियों का गुच्छा लगा रहता है। तो सभी माताओं ने ये तीन बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, बिंदियां भी ज्यादा माताएं ही लगाती हैं। लगाई है चाबी, बोलो माताएं चाबी है, जिसके पास है वो हाथ उठाओ। अब बाबा आपका फोटो ले रहा है। कहीं नहीं, अगली लाइन वाले नहीं उठा रहे, अगली लाइन वालों को पता नहीं बाबा कहता क्यों नहीं उठाते। फिर बाबा पूछ रहा है, चाबी चोरी तो नहीं हो जाती? वैसे घर की हर चीज की चाबी माताओं को संभालना बहुत अच्छा आता है, तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना अविनाशी। अच्छा, तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना चाहते हैं। हिम्मत है? हिम्मत है जो बाबा चेंज करना चाहते हैं? हमारा ही फायदा है, मेरा ख्याल हिम्मत तो है, क्योंकि बाबा कहता है हिम्मत है तभी ज्ञान में चल रहे हैं। एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र प्रसार से अलवेला प्रसारथी बना देता है, और अभी समय अनुसार कौन सा प्रसारस चाहिए, अलबेला नहीं तीव्र प्रसारक चाहिए, और सब चाहते भी हैं कि तीव्र प्रसारथियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। मान लो हॉल के बाहर दो लाइनें लगवाई जाएं, एक तीव्र प्रसारथी के, एक अलबेले प्रसारथी के, तो आप किस लाइन में जाना पसंद करेंगे? अलबेले प्रसारथियों की लाइन लंबी भी होती थोड़ी, तो किस में जाना चाहेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं कि सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए। तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ, तैयार हैं, देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। बाबा सबकी फोटो की एल्बम ऊपर रखता है, बाद में सबको दिखाएगा कि अच्छा, आप कहेंगे नहीं जी, बाबा कहेगा ये देखो तुमने हाथ उठाया था, हैं? फिर क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं, आगे लोग पुलिस वाले चलान करते थे ना, तो कह देते थे नहीं नहीं मेरी कार तो ठीक खड़ी थी, अब वो टीवी दिखा देते हैं कि देख कहाँ खड़ी थी, चुपचाप सिर झुका के जुर्माना दे देते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये टीवी में ऐसे नहीं उठवा रहा हूं। इसलिए बाबा कहता है देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है, अच्छा तैयार है ना, तो अच्छा मुबारक है। तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे ایسا تو نہیں ہے کر لیں گے. تو بابا کہتے ہیں ایک شبد جان گئے تو ہو جائیں گے, کیونکہ سب ہوشیار ہیں, وہ ایک شبد ہے. کیا کیا شبد ہے؟ کارن شبد کو پریورتن کر کے نوارن شبد کو سامنے لاؤ. ایسے ہوا ویسے ہوا نہیں, اب ہوا کرنا کیا ہے؟ کارن سامنے آنے سے وہ کارن سوچنے سے نوارن نہیں ہوتا ہے. تو باپ دادا صرف بولنے تک نہیں لیکن سنکلپ تک بھی کارن شبد کو نوارن میں پریورتن کرنے چاہتے ہیں, کیونکہ کارن بھن بھن پرکار کے ہوتے ہیں اور وہ کارن شبد سوچنے میں بولنے میں کرم میں آنے سے تیور پرشارت کے آگے بندھن آ جاتا ہے. سمجھا جی؟ من میں کارن آئے گا, پھر بولنے میں آئے گا, کرنے میں آئے گا. جس سے بولیں گے وہ بھی آپ کا ساتھی ہوگا, کہے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے, تو اس لیے بندھن آ جاتا. آپ سبھی کا باپ دادا سے وعدہ ہے اور کوئی زبردستی کا وعدہ نہیں ہے, سنیہ سے وعدہ ہے کہ ہم سبھی بھی باپ کے وشو پریورتن کے کارے میں ساتھی ہیں. کیا برہما بابا اکیلے استھاپن کر رہا ہے وشو پریورتن؟ جو آپ ساتھی ہیں, ساتھی ہیں نا. بابا کہتا ہے سنیہ سے وعدہ کیا ہوا ہے, باپ کے ساتھی ہیں. باپ اکیلا نہیں کرتا ہے, بچوں کو ساتھ لاتے ہیں. تو وشو پریورتن کے کارے میں آپ کا کیا کاریہ ہے؟ اگر ساتھی ہیں تو ہمارا کیا کاریہ ہے؟ سرو آتماؤں کے کارنوں کو بھی نوارن کرنا ہمارا کام ہے, دوسروں کے کارن کو بھی نوارن کرنا. تو پہلے تو ہم خود اپنے کارن کو نوارن کریں گے نا, کیونکہ آج کل میجورٹی لوگ دکھی اور اشانت ہونے کے کارن سبھی مکتی چاہتے ہیں. مکتی کس سے چاہتے ہیں؟ دکھ اور اشانتی سے, سرو بندھنوں سے مکتی چاہتے ہیں. اور مکتی داتا کون ہے؟ جو مکتی چاہتے ہیں وہ گنگا سنان سے ہوں گے, مہاتماؤں کے پاس جا کے ہوں گے, قطب مینار سے چھلانگ لگا کے ہوں گے, کیسے مکت ہوں گے؟ تو بابا کہتے ہیں باپ کے ساتھ آپ بچے بھی مکتی داتا ہو. باپ ہمارا مکتی داتا ہے اور آگے ہم انیہ آتماؤں کے مکتی داتا ہیں. اب پروف کیا ہے؟ تو بابا کہتے ہیں دیکھو آپ کے جڑ چتروں سے آج تک کیا مانگتے ہیں. ابھی دکھ اشانتی بڑھتے دیکھ کر سبھی میجورٹی آتمائیں آپ مکتی داتا آتماؤں کو یاد کرتی ہیں مندروں میں چتروں کے دوارا. من میں دکھی ہو کے چلاتے ہیں ہے مکتی داتا مکتی دو, چاہے کسی بھی دیوتا کے آگے جائیں. کیا آپ کو آتماؤں کے دکھ اشانتی کی پکار سننے میں نہیں آتی؟ آتی ہے یا نہیں آتی؟ دکھ کی پکار سننے میں آتے ہیں یا آئس کریم کھانا اچھا لگتا ہے؟ کیوں جی؟ برہما بابا آئس کریم کھاتا تھا یا کھلاتا تھا؟ اس لیے بابا کہتے ہیں فوج ڈھیلی ڈھالی نہیں ہوتی. تو ان کی پکار سنو, آپ کے آگے لوگ چلائیں آ کر کے, تو آپ کیا کرو گے کہ میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں 6 بجے آنا؟ نہیں. تو بابا کہتے ہیں کیا آپ کو آتماؤں کے دکھ اشانتی کی پکار سننے میں نہیں آتی, لیکن مکتی داتا بن کے پہلے اس کارن شبد سے مکتی کرو, کارن شبد کو مکت دو, مکت کرو. तो स्वयं ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में आएगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्ति दाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी जो कमजोरी के शब्द आते हैं विशेष कारण है, फिर उसमें और भी जो कमजोरियां होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे वैसे कैसे, ये भी इनके साथी शब्द हैं जो दरवाजा बंद करने के कारण है। तो कौन कौन है जो मुक्ति शब्द को क्या आवाज सुनने के लिए सबकी खुद मुक्त हो तो किससे मुक्त होना है, कारण से, कारण की जगह निवारण। तो आज बाप दादा को आप बच्चों के जमा के खाते देखने का संकल्प है, देखा भी है और आगे भी देखते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बच्चों को सूचना दी है कि जमा का खाता जमा करने का समय अभी संगम युग है। इस संगम युग पर आप जितना जमा करना चाहो सारे कल्प का खाता जमा कर सकते हो। अगली लाइन गौर से सुनो, फिर जमा के खाते का बैंक बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, प्यार शब्द को तरस में पढ़ो, इसलिए बाप दादा को बच्चों पे तरस आता है। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन के कारण भूल जाते हैं, हो जाएगा देख लेंगे, कर तो रहे हैं चल तो रहे हैं, बड़े मजे से कहते हैं आप देख नहीं रहे हो हम कर रहे हैं, चल तो रहे हैं और क्या करें। लेकिन चलना और उड़ना उसमें फर्क है, चल रहे हो मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना और भगवान का बच्चा शोभता है कि भगवान का बादशाह बनाने का बच्चा प्रजा में लाइन में खड़ा है। इसके बाद बाप दादा कहते हैं जो पहली बारी मिलने आए हैं वो हाथ उठाओ, जो पहली बारी मिलने आए हैं। ज्यादातर दिल्ली वाले आए हैं, 30,000 में से 27,000 दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले जरा ताली बजा लो। अच्छा, और दिल्ली में 13 मई को तालकटोरा मैदान में बहुत बड़ा प्रोग्राम ईयर ऑफ एनलाइटनमेंट गीता का भगवान का हो रहा है सुबह 10 बजे से, सब दिल्ली वाले उसमें आना। जो पहली बारी बच्चे हिम्मत रख के आए हैं उनको विशेष बाप दादा इस संगठन में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। मौज मनाई यहाँ या भीड़ भाड़ लगी, भीड़ में और भी मौज आती है। वह वरदान दे रहे हैं, वह वरदान है अमर भव, वह वरदान सदा अमृत वेले मिलन मनाने के बाद सारे दिन के लिए बार बार याद रखना अमर हूँ, ऐसे नहीं अमर कॉलोनी का रहने वाला हूँ, अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ, अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, जन्म भले ही लेंगे लेकिन सुख शांति अमर रहेगी। अच्छा, ओम शांति। बाकी सोने की दिल्ली तो आपको बनानी है, लेकिन टाइम हो गया तो 3 मिनट सब अच्छी तरह से, जो बाबा ने मोटी बातें बताई हैं खास खास اس کو مہینتا سے اپنے اندر سما لیں.